आज योग शिविर के अंतर्गत जो बातें आपने सुनी, चाहे वो आत्मा से संबंधित बातें थी, परमात्मा से संबंधित बातें थी, मेडिटेशन से संबंधित बातें थी, परंतु अभी का जो ये सत्र है, जीवन में कुछ ज्ञान की बातों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए। जानते तो हम सभी हैं, परंतु फिर भी जब उसको जीवन में नहीं ले आ पाते हैं तो मनुष्य आत्मा दुखी भी हो जाता है। बार बार कोई बात उसको अंदर सताती रहती है, उदास भी हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, और बार बार एक ही सवाल अपने आप से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और जब वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो उस समय वो कभी तो अपने आप को दोष देने लगता, कभी भगवान को दोष देने लगता है कि भगवान भी मेरे साथ ऐसा ही करता है। और जब ये प्रश्न उत्पन्न होता है और उसका जवाब नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, तनाव बढ़ जाता है। तनाव माना क्या, गुस्सा माना क्या? अज्ञान। जब किसी बात के रहस्य को नहीं जानते हैं तो गुस्सा भी आता है, तनाव भी उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही वो बात का रहस्य खुल गया, पता चला, तो तनाव से भी फ्री हो जाते हैं और गुस्सा भी नहीं आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अज्ञान। जहां गुस्सा आया, किसी बात का अज्ञान है, किसी रहस्य का अज्ञान है, और उस चीज को अपने जीवन के साथ देख पाना, जोड़ पाना कभी कभी बहुत कठिन होता है। और ये बात का रहस्य आज हम सुनेंगे समय के चक्र में, कि समय क्या कहता है। बहुत सुंदर गीत हमने अभी सुना, समय का पंछी उड़ता जाए। और ये पंछी ऐसा है कि नित्य कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली उड़ता रहता है। समय हमसे कोई न कोई डिमांड करता है, कोई न कोई प्रतिउत्तर की मांग करता है, लेकिन उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। तब दुनिया में कहा गया है, जब किसी बात का उत्तर नहीं मिलता तो क्या कहते, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। तो ये जानने की जरूरत है कि ये समय हमसे क्या प्रतिउत्तर की मांग करता है। टाइम डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। कोई भी घटना घटती है, कोई भी सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन हमसे एक प्रतिउत्तर की मांग करती है। इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अस, कि हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस टाइम। और उसी बात का अज्ञान जब होता है और गलत रिस्पांस निकलते हैं तब समय बड़ा कठोर हो जाता है। इसीलिए दुनिया में कहावत है, इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की, समय की मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक हो जाता है। इसलिए समय हमसे क्या प्रतिउत्तर की मांग करता है ये जानना जरूरी हो गया है, और समय के हिसाब से अगर हमने अपने रिस्पॉन्सेस दिए समय के अनुकूल, तो वही समय हमें जीवन में आगे बढ़ा देता है, उन्नति को प्राप्त कराता है। वी कैन रीच हाइट्स, लेकिन अगर समय के हिसाब से नहीं हुआ रिस्पॉन्स और उसके विपरीत दिशा में चलते रहे, तो समय अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ करता है। इसीलिए तो कभी किसी व्यक्ति को अगर हम एडवाइस देते हैं और वो सुधरता नहीं है, समय के हिसाब से हमने अपने अनुभव से उसको एडवाइस दिया और नहीं सुधरता है, तो क्या कहते हैं, समय की पछाड़े खाएगा तो अपने आप समझेगा, सुधरेगा। एंड देन वी लीव इट ऑन टू टाइम, अब समय उसको पाठ पढ़ाए, कोई इंसान इसको पाठ नहीं पढ़ा सकता है। तो समय हमसे क्या डिमांड करता है, किस प्रकार के रिस्पॉन्स की डिमांड करता है? टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड वी आर गोइंग थ्रू रैपिड चेंजिंग टाइम्स। इतना तीव्र गति का परिवर्तन हो रहा है, ये समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। हर वक्त समय हमसे परिवर्तन की मांग करता है, लेकिन किस प्रकार का परिवर्तन करना है ये समझदारी, ये मैच्योरिटी जरूरी है। और वहीं हमें ये आध्यात्मिकता मदद करती है, वो विजडम देती है कि किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। नहीं तो समय का पंछी उड़ जाता है और उसके बाद अगर समझ आई भी, लेकिन समय तो चला गया, वो समय वापस लौट के आने वाला नहीं है। समय दो तीन बार अवसर देता है, उसके बाद भी अगर नहीं समझा तो वो समय दोबारा आता नहीं है, और हर वक्त फिर मनुष्य को अफसोस करते रहना पड़ता है, काश वो समय दोबारा आ जाए तो मैं ये कर लूं वो कर लूं। लेकिन समय बीत जाने के बाद अगर होश भी आया तो किस काम का। तब कहा जाता है कि संसार के अंदर समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। समय और संसार दोनों ही परिवर्तन होता चला आया है, होता रहेगा। इस समय के चक्र के अंदर जितने भी चक्र बने हुए हैं सब परिवर्तन हो रहे हैं, नित्य परिवर्तन, कांस्टेंट चेंज। दिन और रात का चक्र देखो, नित्य परिवर्तन हो रहा है। ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो, वो भी नित्य परिवर्तन हो रहा है। कुदरत की साइकिल को अगर देखा जाए, पानी इवेपोरेट हुआ, बादल बने, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आ जाता है। ये चक्र भी नित्य परिवर्तन हो रहा है। किस घड़ी को शुरुआत की घड़ी कहेंगे? दिन और रात के चक्र में ये चक्र कब शुरू हुआ? रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे कब शुरू हुआ? पता ही नहीं है। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 12 बजे ये चक्र शुरू हुआ था। यू डोंट नो। इसीलिए कहा जाता है चक्र माना जिसकी बिगिनिंग और एंड नहीं होती है, चक्र माना जो नित्य चलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र के भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म में भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था आ जाती है, जिसको हम कहते हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदलेगा? ये किसी मनुष्य का काम नहीं है इसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदल जाती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है पता भी नहीं चलता है, भोर निकल भी आती है। इट्स अ ग्रेजुअल चेंज। परंतु वो चेंज कोई दिखाई नहीं पड़ता है, महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी तरह ये घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में अपने आप बदलती है, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, जो दिखाई नहीं पड़ता है, महसूस होता है, फील होता है। हाँ, ग्रॉस लेवल पर हम कुछ चेंजेस को देख पाते हैं, जैसे भोर निकल आती है तो दिखाई देता है, लेकिन उस प्रोसेस को नहीं जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये परिवर्तन का प्रोसेस भी इतना ग्रेजुअल है, जो आ जाने के बाद दिखाई देता है, लेकिन उस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि हर चक्र का एक ड्यूरेशन पीरियड जरूर है, जिसमें ही उसको वो साइकिल को कंप्लीट करना होता है। जैसे दिन और रात के चक्र का ड्यूरेशन है 24 घंटा, उसी में ही कंप्लीट चेंज आ जाता है। ठीक इसी तरह ऋतुओं का चक्र का ड्यूरेशन है 1 साल, उसी में ही कंप्लीट चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल, परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं, ये 5000 कहां से आया, किसने कहा, कहां लिखा हुआ है, क्या सबूत है कि 5000 साल का चक्र है, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का लिखा है, क्या शास्त्र गलत है। लेकिन अगर मैं एक ही सवाल पूछूं कि लाखों साल का एक एक युग, उसका कोई सबूत है, हाउ डिड यू बिलीव, हाउ डिड यू एक्सेप्ट इट कि लाखों साल का एक एक युग है विदाउट एनी प्रूफ। शास्त्र गलत है ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन हाउ डिड यू एक्सेप्ट इट, किस बेसिस पर। वैसे अगर प्रूफ चाहे ना तो किसी भी चीज का प्रूफ नहीं मिलेगा। 24 घंटे कहां से आए, उसका कोई प्रूफ है। जिसने भी कैलकुलेट किया, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह ये दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, चलता था नहीं चलता था। 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे कम हो जाते, ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था। चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो, वो तो उतना ही रहना था ना। लेकिन कभी हमने क्वेश्चन किया ये 60 फिगर क्यों, 50 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, वी नेवर क्वेश्चन्ड, स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को उसी 24 घंटे के हिसाब से ढाल लिया, नो क्वेश्चंस। कि किसी तरह एक ऋतुओं का चक्र देखा जाए, कितने दिन का है, एक साल में कितने दिन होते, 365 दिन का एक चक्र है। किसने कहा, मॉडर्न साइंस ने कहा, और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया 12 मास का, और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, हाँ कितने दिन होते हैं, देखो हिंदू होते हुए भी हमें पता नहीं है कि हमारे कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तीन साल के बाद एक अधिक मास आता है, पूरा एक मास बढ़ जाता है, तो साल में कितने दिन होते हैं, 354 दिन, 354 दिन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। अब 354 सही है, 365 सही है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी जो बना है वो भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। अगर भारत जीरो ही नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस भी कहां से विकसित होता था, उस जमाने का साइंस। तो हिंदू कैलेंडर एक्यूरेट है या इंग्लिश कैलेंडर, दोनों कैलेंडर लेकर हम चल रहे हैं, दोनों कैलेंडर, दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर पर। यह भी नहीं कहा कि भाई हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को डिस्कार्ड कर दो, या इंग्लिश कैलेंडर सही है इसलिए हिंदू कैलेंडर को डिस्कार्ड कर दो, कहा क्या, नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। कौन सा सही है, कहते ये झंझट में क्यों जाना है, जो भी सही हो। लेकिन आज भी अगर देखा जाए कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब अमावस्या और पूर्णिमा आती है, पूरा समुद्र का पानी ज्वारभाटा में चलता है, इतना एक्यूरेट, पूरा समुद्र के पानी को उछाल देता है, तो कितना एक्यूरेट है। जो भी सोलार इक्लिप्स या ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में प्रेडिक्शन होता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता है। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन है। अब आप बताओ कौन सा एक्यूरेट है। फिर भी मान्यता किसको मिली दुनिया भर में? इंग्लिश कैलेंडर। कभी हमने कोई आर्ग्यूमेंट किया नहीं, स्वीकार करके चल रहे हैं। कोई प्रूफ मांगा, ये सही है ये सही है इसका प्रूफ दो, नहीं। 24 घंटे कहां से आए उसका कोई प्रूफ नहीं है। 365 सही है, 354 सही, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लाखों साल का एक एक युग, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और 5000 का प्रूफ मांगते, बोलो। वैसे 5000 साल का प्रूफ है हमारे पास कि ये 5000 साल का चक्र कैसे है, कैसे है प्रूफ। हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए, इतने साल हुए 5000 साल। और उस महाभारत के लास्ट चैप्टर में ये बात लिखी गई है कि जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। अभी घर घर के अंदर क्या चल रहा है? महाभारत चलता है नहीं चलता है? चलता है। तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, हो गया ना 5000 साल। महाभारत के अंदर जो पात्र दर्शाए गए हैं, दुर्योधन जैसे पात्र, क्या आज के समाज के अंदर दुर्योधन जैसे पात्र दिखाई देते हैं? दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में है कि नहीं है? है। शकुनी जैसे पात्र आज के समाज के अंदर है या नहीं है? है। उस नाम से नहीं होगा, लेकिन महाभारत काल में तो एक ही शकुनी था, और आज के काल में हर मोड़ पर एक शकुनी आपको बैठा हुआ मिलेगा जो घर घर में आग लगा रहा है। दुशासन जैसे पात्र आज के समाज के अंदर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, बहुत है। और उसके बावजूद माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? है कि नहीं है? तो महाभारत काल चल रहा है ना, तो 5000 साल हो गया ना। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है। और उनके धर्म शास्त्र के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी ये बात लिखी है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो हो गया 5000 साल। अभी रिसेंट में मायन कल्चर और सिविलाइजेशन के हिसाब से भी ये बात सारी दुनिया के अंदर इन्होंने फैला दी है कि मायन कैलेंडर 5000 साल का है, और उनके हिसाब से 2012 में वो कैलेंडर समाप्त हो रहा है। डेट भी दे दिया उन्होंने तो, मालूम है ना, 21 दिसंबर 2012। अभी मैं जुलाई एंड में मेक्सिको में थी, और वहां ये अवसर मिला मुझे ये मायन रुइंस को देखने का। तो मायन रुइंस देखने हम गए थे, और उस समय जो गाइड हमारा था, जो सारा हमें एक्सप्लेन कर रहा था मायन सिविलाइजेशन क्या है और उसके बारे में बहुत सारी बातें उसने बताई, और उस समय मैंने उनसे यही पूछा कि जब दुनिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि मायन कैलेंडर के हिसाब से 21 दिसंबर को ये दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उस गाइड ने यही कहा कि हमारा कैलेंडर पूरा हो रहा है, हमने ये नहीं कहा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि एक महान परिवर्तन इस दुनिया में आएगा, और 22 दिसंबर 2012 से एक नया कैलेंडर हमारा आरंभ होगा, और उस वक्त ये दुनिया के ऊपर एक नई संस्कृति क्रिएट हो जाएगी। ये हम जरूर कहते, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुजरेंगे। उसके प्रूफ्स उन्होंने बताए कुछ बातों का, उस बात में तो हम नहीं जाएंगे। अगर उस बात को आपको समझना है तो नेट के ऊपर मायन सिविलाइजेशन को आप टाइप करके देख सकते हैं, बहुत सारी बातें उसमें बताई गई है। उसने हमको यही कहा, नेट पर आप जाएंगे तो आपको सारी सिविलाइजेशन क्या थी, ये कल्चर क्या था, ये इसके बारे में जानने को मिलेगा, और 5000 साल का ये कैलेंडर कैसे, वो भी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। भावार्थ ये कि आज दुनिया के हर सिविलाइजेशन, वहां तक के हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू कल्चर भी यही कहता है कि 5000 साल का चक्र, लाखों साल का वर्णन कहीं भी नहीं है। जिसका वर्णन कहीं नहीं है उसको कैसे हम स्वीकार कर सकते, वो तो अंधश्रद्धा हो जाएंगी ना। जो सभी ने स्वीकार किया है उस बात को हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? लेकिन तब फिर कई बार ये सवाल आता है कि अगर 5000 साल का एक चक्र है, तो फिर आर्कियोलॉजी वाले कभी कभी ये बताते हैं कि कोई पत्थर निकलते हैं तो कहते करोड़ों साल पुराना है, तो ये करोड़ों साल कैसे बताया? क्या वो गलत है? वो भी सही है। जैसे दिन और रात का चक्र, एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे चक्र कितनी बार ये पृथ्वी के ऊपर घूम गया, 2011 साल से हम गिनती करते आए हैं, लेकिन उसके पहले भी चक्र चलता था कि नहीं चलता था? हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ, चक्र तो चलता ही था। ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका, अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, उसको कौन डिनाई करता है? तो पत्थर निकलेंगे या फॉसिल्स निकलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है कि 5000 साल का एक चक्र है काल चक्र, और ये 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर अनगिनत बार घूम चुका है। तो तो पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। ये 5000 साल का एक काल चक्र कैसे चलता है उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, हमारे पूर्वज करते आए इसलिए करना है। बाकी उसका अर्थ क्या है ये किसी को पता नहीं है। और स्वास्तिका का निशान हर धर्म में दिखाया गया है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस के रूप में ये चारों भाग दिखाए गए। जो चारों भाग है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों भाग दिखाए गए। तो ये स्वास्तिका किसी न किसी रूप से हर धर्म में जिसके चारों भाग एक समान दिखाए गए। और गीता के सार में ये बात भगवान वाच कही गई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। भावार्थ, ये काल चक्र की हर घड़ी सदा शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं, हर घड़ी अच्छे भी अच्छी है। जो बीत चुकी वो भी अच्छी, जो हो गया वो भी अच्छा, जो चल रहा है वो भी अच्छा, और जो आने वाला है वो भी अच्छा। यही गीता का सार कहता है। यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही अच्छे हैं, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए हर शुभ कार्य पर ये स्वास्तिका का निशान निकाला जाता है, इसलिए कि ये घड़ी के लिए भी डाउट नहीं करो कि पता नहीं ये घड़ी अच्छी है या बुरी, ये घड़ी भी अच्छी ही है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। लेकिन तब कई बार मनुष्य कहते कि नहीं बहन जी, कोई कोई घटना ऐसी जीवन में आती है जिसको देख करके लगता है ऐसा तो किसी के साथ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसको हम अच्छा कैसे समझे। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उसका कार एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में थे, जब हमें पता चला तो हमने सोचा चलो मिलके आते हैं। जब मिलने गए तो जाएंगे क्या कहेंगे, सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही उसको बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम मेरे सामने नहीं हो, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है, पता नहीं इतना बोलने लगा। बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं बोल रहा था, आस्तिक व्यक्ति बोल रहा था, भगवान में विश्वास करने वाला, उसके मुख से आज ऐसी बातें निकल रही थी। आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, इसलिए बेहतर है हम बाहर निकल जाएं। तो धीरे धीरे करके हम बाहर निकलने लगे। बाहर आ गए तो उसकी वाइफ ने देखा, आकर के हमसे कहने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो आप क्षमा कर देना, इस वक्त आप इनके मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने उसकी वाइफ से कहा कि इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाला, आज ये कार एक्सीडेंट क्या हुआ, फ्रैक्चर ही तो हुआ है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज भगवान को इतना गाली क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा ऐसी बातें नहीं है। क्या बात है फिर? तब उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और काफी समाज के लिए अच्छा काम करता था, हमेशा अच्छे कार्य करता था, सबको मदद करता था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होगी, उस गैदरिंग में उसको जाना था, वो इंटरनेशनल इवेंट में उसको जाना था जहां उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हुआ। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होकर के नहीं जा सकता है, तो बार बार जब उसके सामने वो बात आती थी कि इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे, उन सब के बीच में मैं जाता था, मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे लिए दोबारा ये इवेंट तो ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। इसीलिए उसको गुस्सा आ रहा था भगवान के ऊपर कि कर्म मैंने किए, फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया। इसलिए भगवान को गाली दे रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब उसका तो जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किसी ने हमारे सामने सामने कह दिया उसको, अरे भगवान को क्यों इतनी गाली देते हो, कर्म का हिसाब किताब भी तो भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था, है ना। अब उसको क्या कहें, आखिर हम तो वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद, गुरुवार का दिन था, भोग लगाया था हमने, तो सोचा चलो भाई के लिए ले जाते, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। तुम प्रसाद लेकर के गए जब हॉस्पिटल में, तो उस समय और कोई नहीं था, वो और उसकी वाइफ दो ही थे। जैसे ही हमको देखा तो कहने लगे, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हम भी मुस्कुराए, तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया। तो कहने लगा, देखो बहन जी भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था ना, हमेशा हर एक की मदद की थी ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये छोटा सा एक्सीडेंट करके भगवान ने मुझे रोक लिया, नहीं तो आज उसी फ्लाइट में मैं होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, लेकिन जीवन भी चली जाती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने सबसे बड़ा अवार्ड मुझे दिया कि एक नया जीवन दान दिया, इससे बड़ा अवार्ड सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। उसी का ही प्रश्न वही जवाब दे रहा है। 10 दिन पहले कहता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, और उसी का ही वो जवाब देता है 10 दिन के बाद खुद ही, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता था। इसीलिए जब तक अज्ञान है ये घटना क्यों आई, जब तक इस घटना के विषय में अज्ञान है तब तक हमें गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो पर्दा खुलता है, स्पष्ट हो जाता है, उस समय हम यही कहते हैं अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ था तो, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था। हाँ ये जरूर है कि समय को पर्दा खोलने में अपना समय लगता है। ये तो 10 दिन के अंदर समय ने पर्दा खोल दिया। जीवन की कई घटनाएं ऐसी आती है जिसका पर्दा समय एक साल के बाद खोलता है, वो साल कैसा जाता है। साल के बाद हम यही कहते हैं अच्छा हुआ था ऐसा हुआ, नहीं तो आज क्या हो जाता था। कहते हैं ना, पहले ही कहो ना, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गीता के ये महावाक्य कई बार हमने पढ़े होंगे, हमारे घर में या ऑफिस में सामने रखे होंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है तो गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, तनाव भी होता है। अगर उसी वक्त उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाए तो गुस्सा आएगा, तनाव होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, संबंध खराब होंगे, नहीं होगा। यह है आध्यात्मिकता को जीवन में अप्लाई करना। जानना मानना अलग चीज है, लेकिन जीवन में ले आना अलग बात है। जानते हम सभी हैं, मानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं, इसलिए दुखी होते हैं। और फिर ये भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, उसको देख करके आश्चर्य भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो बोल रहा था तो उसकी वाइफ ने कहा कि बहन जी, यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता था। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन गए ना ये 10 दिन गए। पता नहीं इसने भगवान को कितनी गाली दी होंगी। जो आता था भगवान का नाम लेता था और उसको गुस्सा आ जाता था, भगवान को गाली देना शुरू करता था। हरेक की सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती। कई लोग कुछ नहीं बोलते थे उसकी स्थिति को देख करके, लेकिन कई लोग आर्ग्यूमेंट में भी आते थे, और जब कोई व्यक्ति बहस में आ जाते थे, संबंध खराब होने जैसी स्थिति हो जाती थी, मुझे एक एक को बाहर ले जाना पड़ता था, हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी। आप प्लीज इसकी बात का बुरा नहीं मानो, इसकी मानसिक स्थिति को समझो। वो बहन ने कहा, जिंदगी में मैंने अपने का